अभय के कानों में झलक की कही हुई बातें गूंजने लगी थीं कि आकांक्षा ओबेरॉय और सिद्धार्थ खुराना की शादी होने वाली है, क्योंकि एक वक्त था जब अभय पूरी तरह से आकांक्षा की खूबसूरती का दीवाना था। वो उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह मोहित था। इनफैक्ट वो उसे प्रपोज भी कर चुका था और उसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन आकांक्षा ने सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था। जब अभय ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अभय के साथ अपना रिश्ता तो आगे बढ़ा चुकी थी, लेकिन अभय प्रॉपर्टी बिजनेस में उतना बड़ा नाम नहीं था जितने बड़े सपने आकांक्षा देखा करती थी और जितना बड़ा नाम सिद्धार्थ का था। इसीलिए आकांक्षा सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। और अगर आज समाज में उनके नाम पर लगे किसी भी दाग को कोई पूरी तरह से साफ कर सकता था तो वो था सिद्धार्थ का परिवार। फिलहाल झलक ने अभय के चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ लिया था और समझ चुकी थी कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है, लेकिन फिलहाल झलक ने उसे शांत रहने के लिए कह दिया था। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ ने आकांक्षा को उसके मेंशन के बाहर ड्रॉप किया और सीधा अपने अपार्टमेंट में चला गया। वहां पहुंचते ही उसने गुस्से में जितनी हो सकती थी उतनी तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। सबसे पहले उसने उसी रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जब झलक आदित्य के साथ डांस कर रही थी, क्योंकि अभी भी उसे लग रहा था सिर्फ और सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए, उसे जलाने के लिए झलक आदित्य राणा के साथ बेहद करीब होकर डांस कर रही थी। सिद्धार्थ को यही लग रहा था, इसीलिए उसने लगातार फुटेज देखना शुरू कर दिया था। लेकिन जितना ज्यादा वो फुटेज देखता जा रहा था उतना ही उसका खून खौलता जा रहा था। उसका गुस्सा हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार उसने गुस्से में फुटेज को घूरते हुए दांत पीसे और बड़बड़ाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुमने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए किया है। तुम्हें इस बात का पूरी तरह अंदाजा था कि मैं सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूं, इसीलिए तुम जानबूझकर उस आदित्य राणा के साथ इतनी करीब हो रही थी। सिद्धार्थ ने बड़ी ही नफरत और गुस्से के साथ आदित्य का नाम लिया था। सिद्धार्थ अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि झलक उसे छोड़कर इस तरह आगे बढ़ सकती है। अभी भी उसे यही लग रहा था कि झलक का ये सब सिर्फ एक दिखावा है, एक खेल है जो वो सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी रोकने के लिए खेल रही है। फिलहाल दूसरी ओर झलक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। जैसे ही आदित्य ने उसे देखा वो भी मुस्कुरा उठा। गाड़ी में सभी एक साथ बैठे हुए थे इसीलिए आदित्य झलक से कुछ कह नहीं पाया था। आखिरकार कुछ ही देर बाद वे सभी घर पहुंच गए। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, इसका मतलब साफ था कि सभी गहरी नींद में सो चुके थे। अनामिका सीधे अपने कमरे में चली गई। हालांकि झलक ने उसे काफी समझाया था कि वो किसी फालतू इंसान की वजह से अपना मूड खराब नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त वो अकेले रहना चाहती थी इसीलिए झलक ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। झलक भी सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने जाकर कपड़े बदले और फिर सीधा बेड पर लेट गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। झलक चौंक गई, इतनी रात को उसके दरवाजे पर कौन आया था। उसे लगा कि शायद अनामिका अपने मन की बात डिस्कस करने या अपनी उलझन दूर करने के लिए वहां आई होगी। जैसे ही झलक ने दरवाजा खोला वो ये देखकर हैरान रह गई कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि आदित्य राणा खड़ा था। झलक इस वक्त सोने की तैयारी में थी और जल्दी से खुद को कवर करने लगी। आदित्य ने भी तुरंत नजरें फेर ली और एक कदम पीछे हट गया। आई एम सो सॉरी, आदित्य ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं गलत समय पर आ गया हूं। वैसे आपने ही अंदर आने के लिए कहा था इसीलिए मैं, उसके शब्द अधूरे रह गए। झलक ने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, नहीं गलती आपकी नहीं है, मुझे लगा था कि अनामिका आई होगी इसीलिए मैंने बिना देखे दरवाजा खोल दिया, आई एम सॉरी। ये सुनकर आदित्य हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई थी। आदित्य झलक को देख रहा था जबकि झलक समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए। आदित्य ने धीरे से कहा, मैं बस आपसे कुछ बात करने आया था। झलक ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ मैं सुन रही हूं। लेकिन सच तो ये था कि आदित्य खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो झलक से क्या बात करे, वो बस बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं झलक भी आदित्य के चेहरे के बदलते भावों को अच्छी तरह समझ रही थी और चुपचाप उसकी बात का इंतजार कर रही थी। आदित्य ने झलक के बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया था। इस वक्त वो पूरी तरह से अपने जज्बातों पर काबू खोता जा रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। उनके बीच बढ़ता आकर्षण और एक दूसरे के लिए महसूस होने वाला खिंचाव उन्हें लगातार करीब ला रहा था। झलक भी इस अचानक बढ़ती नजदीकी से पूरी तरह अनजान नहीं थी। वो आदित्य को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके होठों से निकलती धीमी सांसें और उसके चेहरे पर उभरते भाव आदित्य को और भी ज्यादा बेचैन कर रहे थे। कुछ ही देर में झलक ने वो चादर भी खुद से अलग कर दी, जिसमें उसने कुछ देर पहले खुद को लपेट रखा था। इस वक्त आदित्य के सामने खड़ी झलक को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसकी नजरें बार बार झलक के चेहरे पर टिक जा रही थीं। वहीं झलक ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं और पल भर के लिए समय मानो थम सा गया था। लेकिन जैसे ही दोनों अपने जज्बातों में बहने लगे, तभी एक बार फिर झलक के दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक हुई इस दस्तक ने दोनों को चौंका दिया। जो कुछ पल पहले एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, वे तुरंत अलग हो गए। आदित्य ने गुस्से भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि इस वक्त उसे बीच में आने वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वहीं झलक के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन ही उसे सारी बात बता रहे थे। फिलहाल झलक ने जल्दी से अपना टॉप पहना, गहरी सांस ली और आदित्य को इशारा किया कि वो पर्दे के पीछे छिप जाए, क्योंकि इस तरह इतनी रात में उसका कमरे में होना किसी के सामने आना ठीक नहीं था। वो शादी से पहले किसी भी तरह की बेवजह की बातें नहीं बनने देना चाहती थी। जैसे ही झलक ने आंखों के इशारे से आदित्य को ये बात समझाई, आदित्य तुरंत पर्दे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त कमरे के बाहर कोई और नहीं बल्कि अभय राणा खड़ा था। अभय को वहां देखकर झलक हैरानी में पड़ गई। अभय ने अंदर आते ही कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। मुझे पता है कि आप यहाँ अपने एक अलग तरह के पर्सनल मिशन पर आई हुई हैं, और सच बताऊं तो मैं आपके काम में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो लड़की किसी के भी लायक नहीं है। मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मैं कल ही मिस्टर सिद्धार्थ खुराना से मिलकर उन्हें उस लड़की का पूरा सच बता दूंगा, क्योंकि मैं उसे लड़की को उसकी असलियत के साथ सामने आते देखना चाहता हूँ। अभय ने शायद जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी का ख्याल उसे बिल्कुल भी सोने नहीं दे रहा था। इसी बेचैनी में वो झलक के कमरे तक चला आया था। तभी झलक ने हल्की मुस्कान के साथ अभय की तरफ देखा और कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी बिल्कुल भी नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी, और जो आप चाहते हैं वही होगा। लेकिन फिलहाल आप जाइए और जाकर आराम कीजिए। कब, क्यों और कैसे ये सब होगा, इसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगी। झलक ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ ये बात कही। वहीं अभय पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, लेकिन झलक के चेहरे पर दिखाई दे रहे आत्मविश्वास को देखकर उसने उसे कोई और सवाल नहीं किया और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। अभय के जाते ही आदित्य पर्दे के पीछे से बाहर आया और गुस्से से दरवाजे की तरफ देखने लगा।
झलक उसकी हालत देखकर मुस्कुरा दी और फिर बोली, मिस्टर राणा, आई थिंक अब काफी लेट हो गया है, आपको भी जाकर सो जाना चाहिए। आदित्य का इरादा तो कुछ देर और झलक के साथ वक्त बिताने का था, लेकिन झलक की बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। वो केवल आगे बढ़ा, झलक के माथे को चूमा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। आदित्य के जाने के बाद झलक ने अपने माथे को हल्के से छुआ। आदित्य के स्नेह भरे स्पर्श ने उसके दिल में एक अलग ही एहसास जगा दिया था। उसके होठों पर अनायास मुस्कान आ गई और वो मन ही मन बोली, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बार फिर प्यार मेरी जिंदगी में दस्तक देगा, और अब मैं इस प्यार को अपनी जिंदगी से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगी। झलक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कही और फिर एक मीठी मुस्कान के साथ सोने की कोशिश करने लगी। आखिरकार अगली सुबह उसे शहर के फेमस मॉल में जाना था, वो भी सिद्धार्थ खुराना और आकांक्षा ओबेरॉय की शादी की शॉपिंग करने के लिए।